भूतले श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिनः अतिमत्त चरित्राय स्वास्थानानि च पालिने जीव दुखे सदार्ताय नाम वंशा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं आज गुरु पूर्णिमा का दिवस है। मैंने कल मैंने बतलाया था अखंड गुरु तत्व बलदेव प्रभु या नित्यानंद प्रभु हैं। व्यास जी के संबंध में बतलाया ये जगत गुरु है, ये स्वयं नारायण हैं, तो भी जगत में जीवों का कल्याण करने के लिए व्यास के रूप में आए और व्यास का अर्थ और ये सब चीजें कल हमने बतलाया। उन्होंने ही वेदों का विभाग किया, ब्रह्म सूत्र बनाया, उन्होंने महाभारत बनाया, पुराणों को उन्होंने प्रकाशित किए, 54 पुराण, पुराण उपपुराण और शाखा पुराण उन्होंने प्रकाशित किए, महाभारत की भी रचना की और अंत में कुछ बाकी रह गया तो उन्होंने श्रीमद् भागवत को प्रकाशित किया, इसलिए वो जगत गुरु हैं। आज उनका इसी पूर्णिमा के दिन में मथुरा में ही एक टापू पर जहां पर सरस्वती नदी मिलती थी यमुना जी में, उसी टापू में इनका जन्म हुआ था और सारे ज्ञान तत्व को इन्होंने जगत में प्रकाश किया। इसलिए आज चाहे कोई भी संप्रदाय हो, समस्त संप्रदाय में, यहां तक कि अद्वैतवादी संप्रदाय में भी ये उत्सव मनता है, गुरु पूजा होती है। यद्यपि मायावादियों की अद्वैतवादियों की गुरु पूजा निष्फल है, क्यों? व्यास को गुरु मानते हुए भी उनको भ्रांत बतलाया शंकराचार्य, वो भी भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए उन्होंने ऐसा किया, उनको भ्रांत बतलाया। भगवान आनंद है, आनंदमय नहीं है, भगवान आनंद स्वरूप हैं और सत चित आनंद तीनों एक ही चीज है, पर्यायवाची शब्द है, तीन अलग अलग नहीं है, किंतु उन्होंने लिखा जो आनंदमय है तथा इनका रूप होगा, गुण होगा, आनंद होगा। अभी कह देना जैसे लोग अभी ना आए तो अच्छा, सुनो तो शंकराचार्य ने बैठ अपने गुरु के आदेश को नहीं माना, इसलिए उनकी पूजा निरर्थक है। उनके संबंध में बहुत कुछ बतलाया, आज उन्हीं की परंपरा में सनातन गोस्वामी हैं। आज ही के दिन गोवर्धन में भगवान का भजन करते करते नित्य लीला में प्रवेश उन्होंने किया था। उनकी समाधि तो वृंदावन में है, किंतु उन्होंने ये संसार का त्याग किया था गोवर्धन में और इसीलिए वहां पर मुड़िया पूर्ण होती है, गुरु पूर्णिमा प्लस मुड़िया, मुड़िया माने मूड़ को मुड़ाते हैं, किस लिए? पूर्णिमा में सनातन गोस्वामी जी के लिए, विरह के लिए मनाते हैं और तभी से प्रथा चलती है कि प्रतिवर्ष गोवर्धन के जितने और आसपास के जितने वैष्णव लोग हैं वो मुंडन करके और कीर्तन शोभा यात्रा के साथ में सनातन गोस्वामी को स्मरण करते हैं। इसलिए इस पूर्णिमा का नाम ही हो गया मुड़िया पुनो। और तब से ऐसी परिक्रमा लगनी आरंभ हो गई, प्रति वर्ष में लोगों की संख्या बढ़ने लगी। अब तो ये स्थिति है करोड़ों लोग आते हैं, 60-70 लाख से तो कम नहीं, करोड़ों तक पहुंच जाती हैं। अब पूरी फौज मिलिट्री पुलिस पहुंचती है व्यवस्था के लिए, उन लोगों को सांस लेने का समय नहीं, इतनी बढ़ती जाती है। परिक्रमा का फल भी उनको मिलता है, इसलिए करते हैं लाखों लोग, ऐसे नहीं करते। तो आज सनातन गोस्वामी के संबंध में और इस पूर्णिमा के संबंध में, और कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण लगा था, आज तो चंद्र ग्रहण है ना, तो ग्रहण है, इस ग्रहण से हम लोगों के संप्रदाय का क्या संबंध है, इन सब विषयों पर चैतन्य महाप्रभु का इस ग्रहण से क्या संबंध है, रूप गोस्वामी का क्या है, इस विषय पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग ध्यान से इन सब चीजों को सुनेंगे, विभिन्न वैष्णव लोग बोलेंगे। और आज 9 बजे, 9:30 बजे तक चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण लग गया है। हम लोग जो अभी कह रहे हैं ये भी कीर्तन है, बल्कि उच्च कोटि का ये कीर्तन है। भगवान के नाम रूप गुण लीला का विस्तार करना, कीर्तन करना, ये यथार्थ कीर्तन है। मृदंग के साथ में भी 8 बजे से 9 बजे तक हम लोग नृत्य करते हुए कीर्तन करेंगे सभी लोग। कम से कम हमारे मठ में जितनी खोल मृदंग है वो सब चाहिए, बड़ा मजीरा भी चाहिए, और कोई ब्रह्मचारी सोता हुआ मुझको न मिले इधर उधर। आजकल ब्रह्मचारी लोग भी जी चुराते हैं, कीर्तन में नहीं आना चाहते, बहुत कष्ट होता है उनको। ये तो आनंद की बात है, महाप्रभु 36 घंटे लगातार कीर्तन कर रहे हैं, नित्य कर रहे हैं पुरी में जगन्नाथ मंदिर के साथ। अरे हम लोग बूढ़े लोगों को जितना एनर्जी है, उत्साह है, तुम ब्रह्मचारियों को तो हवा में उड़ना चाहिए तब तो। इसलिए आज हम लोगों के परम पूज्यपाद सनातन गोस्वामी का जीवन चरित्र के संबंध में, उनकी शिक्षाओं के संबंध में, विशेष रूप से ब्रज में उन्होंने क्या किया, और जो चरित्र महापुरुष से संबंधित हैं हमारे सन्यासी लोग ब्रह्मचारी लोग बतलाएंगे, आप लोग सुनिए। पहले हमारे गौड़ीय वेदांत समिति के ज्वाइंट सेक्रेटरी विद्वान आदमी हमारे भक्ति श्रीमद भक्ति वेदांत आचार्य महाराज जी कुछ बोलेंगे, यदि हिंदी में बोल सके तो बहुत ही अच्छा, और नहीं तो फिर जैसा हो बंगला में बोलेंगे। और इधर हमारे श्रीपाद मधुसूदन महाराज जी भी बहुत विद्वान आदमी हैं, प्राचीन वैष्णव हैं, ये भी यदि हिंदी में बोल सकेंगे तो अच्छा है, नहीं तो बंगला में सुनेंगे हम उसका अनुवाद करा दें। बोलिए इनको दे, आराम का दिन होता है तो उसमें आ जाते हैं। गुरु जी ने कहा जे 1 लाख नाम करो, या और कहा आदेश, नहीं पालन करेंगे। गुरु जी के ठीक विपरीत रखते हैं, तो फिर क्या हुआ, इसलिए इन्होंने बताया गुरु पूजा माने गुरु के वचन के अनुसार में काम करे, उसके अभिलाषा के अनुसार में चले तो वो गुरु पूजा, और गुरु पूजा अन्यथा गुरु पूजा नहीं।
इस संदर्भ में
जाओ सुखी रहो तुम, तो उसकी अधिष्ठात्री देवी है, वैसे जमुना जी की अधिष्ठात्री देवी है ना, वो मगर पर चलती हैं, गंगा भी मगर पर चलती हैं, और जो स्नान उसमें करते हैं उसका कल्याण करती हैं। हिमालय पत्थर है, तो हिमालय की बेटी कैसे हो गई उमा, तो कुछ है कि नहीं हिमालय, उसका एक अपना स्वरूप है। हमारा शरीर जड़ है, जड़ है ना, मट्टी पैखाना टट्टी पेशाब का बना हुआ है, रक्त और मांस, इसका अधिष्ठात्री देवता इसमें कौन है, जीवात्मा है, और उसका संचालक कौन है, उसको हम नहीं देखते। इस तरह से यमुना नदी को हम देखते हैं पानी के रूप में, किंतु उसके अंदर में उसकी अधिष्ठात्री देखते हैं। ये जो छाया दिखती है, छाया क्या चीज है, जड़ है कि चेतन है? ऐसा मालूम होता है कि जड़ है। ये जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की जो छाया इत्यादि होती है, जड़ मत समझो, इसके भी अधिष्ठात्री देवी होगी। श्रीधर महाराज एक बार बोल बतला रहे थे, देवी उसकी क्रिया होती है, जो कोई चीज है ही नहीं उसकी क्रिया नहीं होती। तो जब छाया से क्रिया होती है तो उसकी अधिष्ठात्री देवी कोई होगी। इसलिए जो छाया कर रहे हैं, जो सूर्य और चंद्र को ग्रह ग्रास और जो पृथ्वी इत्यादि को मैं नहीं दिखती है, ये छाया, छाया में भी कुछ है और उसका प्रभाव सुप्रभाव और दुष्प्रभाव बनता है। भागवत में बहुत चीजें हैं, बहुत गंभीर रूप में है, उनको समझना साधारण बातों लोगों के लिए संभव है। ब्रह्मा तो यहां तक कहते हैं कि जानंत एव जानंत किं भोक्ता में पुनः बक्सो मनसो बाचो, बड़ा मुश्किल। पृथ्वी की धूली कणा गिनने वाले अनंत देव हैं, सूर्य तारे ग्रह नक्षत्र को गिनती करना बड़ा असंभव, इसको भी कोई गिन सकता है। भगवान की महिमा और ये सब चीजों का वर्णन करना बड़ा कठिन, इसलिए ये सब में अधिक नहीं जा करके क्या करो, भगवान नाम करो, भगवान की भक्ति। ग्रहण के दिन में जो दान की बात कही गई, पहले दान इतना लोग करते थे कि किसी का हाथ नीचे नहीं होता था, ऐसे होता था, कोई ऐसे नहीं हाथ नहीं पसारता था। क्या करते थे, केवल देते थे दूसरों को। दान देने से दान ग्रहीता और दान दाला देने वाले में जो दान देते हैं अपने दुष्कर्मों का फल दे करके अपने आप शुद्ध होते हैं। दुष्कर्मों का फल अर्थ के रूप में दे करके दान के वस्तुओं के चीजों में, अन्न में, रुपया पैसा द्रव्य में अपना दुष्कृतियों का जो फल है उसमें दे करके उनको दे देते हैं। और जो ग्रहण करता है क्या करता है, उसे ग्रहण करता है। यदि वो समर्थ नहीं है तो क्या होगा, उन दुष्कर्मों को लेकर के मरता है। हम लोग समझते हैं कि वाह दान ले लो, खूब दान लो, दान देने से ही लोग मरते हैं। गुरु के नाम पर दान लेते हैं, वैष्णव के नाम पर दान लेते हैं, ठाकुर जी के नाम पर जो दान लेते हैं क्या होता है, उनका नरक जाते हैं। लेकर के यथा उपयोग भगवान की सेवा में, गुरु की सेवा में लगा दे, वो समर्थ व्यक्ति कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। दान लेना बड़ा सहज है, किंतु उसके दुर्कर्मों को भोग करना बड़ा भारी कठिन है। इसलिए खबरदार दान मत लो। और यदि गुरु वैष्णव के लिए नाम पर कुछ एक पैसा भी मिले क्या करो, हजम नहीं कर सकते, इसलिए उस दान को क्या करो, यदि लिया है भी इस तरह से गुरु जी को दे दो, वो उसको शुद्ध करके भगवान की सेवा में लगा दे। तुम लोगों में सामर्थ्य नहीं है, हम लोगों में सामर्थ्य नहीं, यदि किया इसलिए हम लोगों का भजन नहीं होता है, भजन का फल उसमें नष्ट हो जाता है, इसलिए आप लोग दान मत लेंगे। यदि हो तो भगवत सेवा के लिए लेकर के भगवान की सेवा में लगा दो, नहीं तो बड़ा भारी मुश्किल होगा। इसलिए इस दान को कृष्ण जी और सबको दे रहे हैं, और कौन ले रहे हैं, नहीं ब्राह्मण लोग लेते हैं। कौन से ब्राह्मण, वो दानी कहलाते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो मरने के बाद में जो दान लेते हैं उनका छुआ हुआ पानी नहीं चलता, सुना है ना, चलता है। यहां पर भी जो अग्रदानी होते हैं मरने के बाद में जो दान लेते हैं उनका छुआ हुआ पानी हमारे समाज में नहीं चलता, क्यों, पाप का अन्न भोजन करते हैं। इसलिए भाई दान सहज चीज नहीं है, दान वशिष्ठ ग्रहण कर सकते हैं, दान बड़े बड़े ऋषि लोग समर्थ हैं। महाराज दशरथ ने अपना सारा राज्य रामचंद्र जी के बेटे होने पर, पांच चार बेटे होने पर सारा राज्य दे दिया वशिष्ठ जी को दान के रूप में। उन्होंने कुछ सोचा, कहा अच्छा ठीक है दान ले लिया, कहा जी ठीक है दान मैं ले लिया, ये मेरा है, और तुम इसकी मैनेजर बन करके इसको रखो, एक कौड़ी फूटी लिया उसमें से, कुछ नहीं लिया। कहा जैसे तुम्हें इसकी रखवाली करना, एक पैसे का तू मालिक नहीं है, बिना हमारे कुछ अनुमति के कुछ नहीं कर सकता, और तुम इसका देखभाल करके मैनेजर बनो। ऐसे छोड़ धन ऐसे जीते, बहुत सावधान। इसलिए सूर्य ग्रहण के समय में सभी लोगों ने दान दिया, और जो ब्राह्मण लोग इस चीज को नहीं समझते हैं स्मार्ट, और जो ब्रह्म तत्व को जानने वाले हैं वो समझते हैं वैष्णव, इसलिए वैष्णव नहीं लेते। बहुत सावधानी से रहते, नहीं तो उनका भजन ही नष्ट हो जाए। इन इंडिया दिस इज वैदिक कल्चर दैट एट द टाइम ऑफ सन एंड एक्लिप्स ऑल द डिवोटीज और एनी वन दे डोनोट एवरीथिंग टू अदर्स टू ब्राह्मण, बट इट इज वेरी वेरी डीप थिंग टू थिंक विच वी डोनेट एनी वन डोनेट्स ही गिव्स इज the result of, no, the fruit of his bad activities, and those who took, take, what become? They will suffer. So we should not take down donation. Try to give, to purify ourselves. Those who are so much, very much strong in bhakti, they can take something and they can properly use one farthing even, they will not use for themselves. They will use for Guru, Guru Krishna, Bhagavan, otherwise we should not give. But we should try to give some donation. But don't give donation to Gurudev and Vaishnav. What? Oh, for seva you can give. Everything, then it is good. अब फिर एक थोड़ा सा कीर्तन हो, इसके बाद में कृष्णदास जी आप तुम करो, और हम उनको नहीं देता है तुमको देता है, किस लिए सोचता है जी ये भगवान की सेवा करते हैं इसलिए देता है, गुरु जी ने तुमको बेच दिया भक्ति के लिए, और तुम भक्ति ना करके तुम अपना विवाह कराएगा और उस रुपए को अपने में खर्च करेगा, अपने रसगुल्ला मंगा करके खाएगा तो मरेगा, इस चीज को समझो। वहां द्वारकाधीश का मंदिर खुला हुआ होगा, भगवान के मंदिर जितने होते हैं सब खुले रहते हैं, भगवान के मंदिर जितने भी होंगे, हमारे यहां पर भगवान नहीं है, यशोदा जी का लाला है, ऐसा समझो, इसको वो छाया ना लग जाए इसलिए हम लोग पर्दा दे करके रखा है। जब भगवान का मंदिर है उसको बंद नहीं रखना चाहिए, भगवान के ऊपर में सूतक फूतक कुछ नहीं लगता, किंतु ये कन्हैया छोटा सा लाला है ना, नजर लग जाएगी, इसलिए हम लोग पर्दा दे करके अंत तक रखते हैं, जो ये छाया उसको ना लग जाए, भगवान नहीं है। जो सादा मैया ने, ब्रजबालाओं ने, नंद बाबा ने, सखाओं ने कभी भी कृष्ण को भगवान नहीं माना, इसलिए पर्दा दिया गया है। और जहां पर भगवान का मंदिर होगा शालग्राम रहेंगे प्रधान के रूप में, यहां पर द्वारकाधीश है ना भगवान है, यदि वो का खुला रहना उचित है, उनका सुदर्शन चक्र भी साथ साथ में है, हमारे लाला के पास में चक्र फक्र नहीं, कहां नहीं, सब जगह नहीं, वो नंदगांव बरसाना में बंद होता होगा, वृंदावन में भी नहीं होता ना, बंद है, किंतु भगवान का मंदिर है, वृंदावन में भगवान नहीं है, नंदगांव में भगवान नहीं है, इसलिए सामंजस्य कर लेना चाहिए। अभी हिंदी भाषा में सरस शब्दों में हमारे रसानंद ब्रह्मचारी जी कुछ सनातन गोस्वामी आज के संबंध में कुछ बोले, और जल्दी खड़े
ग्रहण भी शायद समाप्त होने वाला और
अभी एक घंटा है, अभी अभी हमारे श्रीपाद भक्ति वेदांत मसूदन महाराज जी 15 मिनट में कुछ बोलेंगे। प्लीज तुम्हार माथा आश्चर्य ना ताले आर की लगे जखन जशोदार बाड़ी थे कृष्ण जा थकें जशोदा मायर कोले थे तक राधिका प्रभृति की मन करबे कि मन करबे এইসবগুলি নিজে বৈষ্ণব কাছে বসে এইসব সিদ্ধান্তগুলি সামঞ্জস্য করতে, এটা মানে স্বভাব জিনিস নয়, নয়তো সকলেই ভ্রমেতে পড়ে যাবে। কি আগে কি বলল? না না, ওই ব্যাস পূজা, গুরু মহারাজ ব্যাস পূজা পদ্ধতি কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন আর কখন করতে বলেছেন জানা আছে কিছু? তার মধ্যে ব্যাস পঞ্চক ইত্যাদি যে আছে ওখানে তিনি পাঁচ পঞ্চক আবার দুটা বাড়িয়ে দিয়ে সপ্ত পঞ্চক করলেন, কিন্তু মূলে কাকে রাখলেন? তো উনি গুরুদেব কি ব্যাস ব্যাসায় নামা করতেন না কি করতেন, কিভাবে পূজা করতেন দেখেছ? আমরা তো জন্ম থেকে দেখছি, যখন থেকে ব্যাস পূজা আরম্ভ হয় ওর পূর্বে থেকে, যে ব্যাসকে মানে না ও গুরু নয়, এইটা বুঝে রাখো। গুরু মহারাজ নিজে বলতেন, তার লেখনীতেও আছে না,
গুরুদেবকে না মানলে গুরুদেবকে মানানো হলো, তাহলে গুরুদেবকে মানলে
না, গুরুদেব ব্যাসকে না মানে গুরু নয়, অর্থাৎ ওই যে ব্যাসকে মানে না এরকম যদি গুরু থাকে ও অগুরু, কুগুরু, এটা বুঝে রাখো। অতএব গুরু গুরুই নেই যে ব্যাসকে মানে না, ব্যাসকে মানে না গুরু কি? এই জন্য গুরু তত্ত্বের মূল গোড়া হচ্ছেন এই ব্যাস, যিনি ভাগবতকে রচনা অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই ব্যাসকে মানে না তাহলে আর কি হোক? এই জন্য গুরুকে মানলেও ব্যাসকে মানে না, গুরু পরম্পরা আদিকেই মানে না, তার গুরু মানা হয়নি, উসকো গুরু মাননা নেই হুয়া। इसलिए व्यास जी को जो मानता है वही गुरु है, इस चीज को ठीक रखना होगा। इसलिए सब संप्रदायों में व्यास जी की पूजा कर, गुरु देवी जो व्यास की पूजा नहीं करते तो उनकी पूजा नहीं होती, वो गुरु है ही नहीं। इसलिए गुरु महाराज जी इसी चीज को प्रचलन करना चाहते थे, इसलिए व्यास पूजा में व्यास पंचक, आचार्य पंचक, कृष्ण पंचक, गुरु परंपरा पंचक इत्यादि 7 पंचक को उन्होंने ग्रहण किया और उसकी पूजा करते हैं। हम लोग उसको पूरा नहीं कर सकते, किंतु व्यास जी गुरु तत्व के मूल चीज है, इसलिए इनकी पूजा की जाती है। और की एक तो बोल लो मोटा मोटी आश्रय, देखो भाई शास्त्र को देखने से ऐसा ही मालूम होता है, व्यास जी को कभी भी जीव तत्व नहीं कहा गया, कहीं भी नहीं
बोले जाए ज्ञान शक्ति दीछे ज्ञान शक्ति,
कभी भी जीव तत्व नहीं बोले, सत्ता अवतार बहु रकम आए लघु भगवान तुम पढ़ले बुझब, ये तो पढ़व भलो करे, सत्तावेश अवतार मध्य सब एक रकम न, ब्रह्मा मध्य तो शक्ति आवेश आ শঙ্করের মধ্যে আবেশ আছে দুটাই, নারদকে ছড়ে দাও, শঙ্কর কি জীব তত্ত্ব? এ সবক বিচার রাখা চাই, এসে আশ্রয় হলে সে মহাপ্রভু আশ্রয় তত্ত্ব হ্যাঁ, কিসলিয়ে কৃষ্ণ হতে রাধাজি কাজ ভাব দিয়া, এসলে ও ভগবত তত্ত্ব হই রেগে, ও জীব তত্ত্ব নেই হোক। इसलिए व्यास जी को हमने देखा है जहां तक कहीं भी जीव तत्व नहीं किया है, आश्रय तत्व होने से ही जीव तत्व हो जाएगा आश्रय। महाप्रभु विषय भी तत्व है आश्रय भी तत्व है, इसलिए व्यास जी तत्व के विचार से जो पूर्ण स्वांश होना चाहिए वो नहीं है, भगवान के जो अवतार हैं कितने उसमें दिखाया गया, श्वास में भी कितने तरह के, कुछ अधिक कुछ कम, इस तरह से उसका तारतम्य है। इसलिए ये श्वास तत्व तो नहीं है, किंतु स्वास्थ्य होने नहीं होने पर भी जीव तत्व नहीं है। नहीं देंगे, नहीं देते, किंतु जब भगवत विष्णु तत्व के रूप में करेंगे तो देंगे। हाँ, शंकर जी के चरणों में देगा, सदाशिव के चरण में, शिव यदि है तो नहीं देंगे। यहाँ पर देते हैं सदाशिव, गोपीश्वर में देता है, फिर वो क्या तत्व है? हाँ वही सदाशिव तत्व है, किंतु नहीं दिया जाएगा। ये सबका विचार अच्छी तरह से समझ बूझ करके करना होगा। ये साधारण सभा में ये चीज नहीं है, कुछ खास योजना है, ये विशेष सभा है। तो आज सनातन गोस्वामी जी का भी तिरुभाव तत्व है, उन्होंने भक्ति की एक नई दिशा दी। जितने भी रूप गोस्वामी ने ग्रंथ लिखे हैं भगवत बृहद भगवतामृत के ऊपर में, अपनी टीका करने से और नहीं टीका करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथों की टीका नहीं की तो इसका मतलब क्या है? कम हो गया, ऐसा मत समझो। इसके ऊपर मैं निर्भर नहीं है। सनातन गोस्वामी जी ने बृहद भगवतामृत पर इसलिए लिखा, इतना गंभीर विचार है जो दूसरों के लिए समझना बड़ा भारी मुश्किल है। भक्ति का तम तब में दूसरे नहीं समझ सकेंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और इसलिए रूप गोस्वामी ने और दूसरे गोस्वामी ने उनके इस ग्रंथ को आधार बना करके सब ग्रंथ लिखा। भगवत तत्व का विचार, भक्तों का विचार ये सब, इसलिए सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के भी गुरु तत्व है। किंतु होते हुए भी सनातन गोस्वामी जी रूप गोस्वामी को प्रणाम किया है, जो उनकी कृपा होने से महाप्रभु की कृपा या कृष्ण की कृपा हो सकती है। ऐसे सनातन गोस्वामी जी हैं। बहुत रात हो गई है, अब हम लोग कीर्तन करेंगे और कीर्तन के बाद में, कीर्तन अभी से चलता रहेगा करीब करीब, कितना है 9 बज करके, हाँ तो थोड़ा सा कीर्तन। विभिन्न ब्रह्मचारी लोग हैं, कृष्ण